मनुष्य को अपने उत्तरोत्तर उन्नति करनी चाहिए। आज जो साधन किया कल से इस ओर अधिक होना चाहिए, रोज रोज उन्नति करनी चाहिए। और दिन के माँ भी समझो कि प्रत्येक घंटा के बीच में देखना चाहिए कि जो घंटा बीत गई है इस घंटा में बस बढ़ करके कि अपना साधन करना। घंटा के अंदर फिर समझो कि मिनट मिनट के बीच क्षण के बीच के माँ जो समय बीत गए है बस और अधिक मात्रा में और अधिक भाव से साधन अपने उत्तरोत्तर तेज करना चाहिए। क्षण के बीच के वहां अपने साधन यदि तेज करा तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। आज प्रातःकाल महात्माओं के तत्व रहस्य की बात कही और भगवान के नाम के जप के तत्व रहस्य की बात कही और भगवान के स्वरूप के विषय में तत्व रहस्य की बात कही। उसमें जो भाव प्रधान बताए तो वो जो 45 मिनट को व्याख्यान है लेकिन लेख रूप में लाकर के हरेक भाई अपने पास रखे तो बस बहुत लाभ। तो उत्तरोत्तर खूब ही एक प्रकार से अपनों समय जो है सो उच्च कोटि को बनाए। उद्रेक आत्मा आत्मान, आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करे। क्षण क्षण में जो आत्मा को उन्नत करना है ये बहुत ही सबसे बढ़कर बात है। ये विचार करना चाहिए कि कल का दिन तो निकल गया, अब आज का दिन निकले या न निकले काल का क्या भरोसा है। और यदि मृत्यु आकर के प्राप्त हो जाए तो अपने पास में ऐसा कौन सा चारा है, कौन सी गारंटी है कि अभी नहीं मरेंगे, मरना है वैसे। अपने मर गए तो एक प्रकार से जो काम बाकी रह गया सो रह गया था। सबसे बढ़कर के आपके लिए यह बात है कि जिस काम के लिए आप आए हो उस काम को एक नंबर सबसे बढ़कर समझ करके पहला नंबर उस काम चाहिए, वो काम सबसे पहले करना चाहिए। और जितने जो काम हैं वे आप नहीं भी करेंगे कभी भी नहीं जाएगी तो आप उत्तराधिकारी कर लेंगे, किंतु आपका जो उद्धार है आपकी आत्मा का जो कल्याण है वो आपके बिना दूसरे से होने का नहीं है। तो वो ही है सबसे बड़कर काम, सबसे जरूरी काम। उस काम को सबसे पहले करना, सबसे जो जरूरी काम है बड़कर काम है उस काम को एक तत्परता के साथ प्राण प्रेम चेष्टा करके सिद्ध करना, यही अपने आप करके अपने आप की उन्नति करना है। जिस काम को हम बुरा समझे और उस काम को हम एक प्रकार से त्याग कर दें एकदम, तो ये भी अपने आप करके अपने आप की उन्नति करनी है। और इसके जो विपरीत है वो अपने आप का अपने आप के द्वारा पतन करना है। जिस काम को बुरा समझे, जिस गुणों को काम करो आदि गुणों को बुरा समझे, जिस आचरणों को झूठ बोलना, चोरी करना, व्यवचार करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, मदरा पीना, मांस खाना, जो बुरे जितने काम उस काम को बुरा समझ करके हम कहें तो ये अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन करना है। कि सिद्धांत से हम जिसको बुरा समझते हैं और फिर हम उसको करते हैं तो इससे बढ़कर और क्या बुराई हो सकती है। इसी प्रकार से जो अच्छे से अच्छा काम है भजन करना, ध्यान करना, सत्संग करना, उत्तम गुणों का संग्रह करना, उत्तम आचरण करना, यज्ञ दान तप करना, लोगों की सेवा उपकार करना, ईश्वर की भक्ति, संसार से वैराग्य, ये सब जो जितनी बात है ये अमृत के समान थी। इसका हम सेवन न करें, इससे हम वंचित रहें, तो ये अपने आप का अपने आपके द्वारा समझो कि अपनी आत्मा का एक प्रकार से पतन ही है। मनुष्य का शरीर पाकर के यदि अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया तो तुलसीदास जिसकी निंदा करते हैं और भी शिवशास्त्र वाले निंदा करते हैं, जो न तारे भव सागर है न समाज ऐसे पार, तो कृत निंदक मंदमती आत्मन गति जा। जो ऐसे मौके को पाकर के, ऐसे समाज को पाकर के, ऐसे संजोग को पाकर के जो घर सागर के पार नहीं करता है वो मूर्ख और निंदा का पात्र है। और देश से प्राण वियोग करने वाले की जो गति होती है, आत्मत्याग की जो गति होती है, वही गति उसकी होती है। यह भी एक आत्मत्याग है। जो अपने आत्मा का जो उद्धार है और वो प्रत्यक्ष है तो उसको जो टुकड़ा देता है, वेलना कर देता है, तो वो एक प्रकार से थी अपने आपके द्वारा अपने आप की अत्यय करता है। शरीर को एक प्रकार से जो अपने त्याग करना है, देह के साथ में प्राणों को वियोग करना है, वो जानबूझ कर आत्महत्या है। किंतु यह उससे भी बढ़कर के आत्महत्या है जो मनुष्य के शरीर को पाकर के और साधन की हेलना करना, यह उससे भी बढ़कर के आत्महत्या है। भाव यह है, ऐसा मौका पाकर के और जिस किस प्रकार से हो अपनी आत्मा का शीघ्र उद्धार कर लेना चाहिए। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म, उत्तम संघ, ये सब ईश्वर की बड़ी भारी कृपा से ही मिलते हैं, तो इस सबका लाभ उठाना चाहिए। और जो नहीं उठाते उसको आगे जाकर पश्चाताप करना पड़ेगा। पुलिसवादी कहते हैं सो पारत्र दुख पावही सिर दोने दोने पछिता, जो इस समय में सचेत नहीं होगा उसको आगे जाकर के सिर्फ ढूंढ ढूंढ करके घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। और काल कर्म और ईश्वर को वह झूठा दोष लगा हुआ था। दोष तो उसका खुद का है और दूसरे ऊपर झूठा दोष लगा हुआ है। काल का तो दोष है ही नहीं, ये कलयुग तो बड़ा उत्तम काल है। काली युग सम युग आना नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भगवतर आत्मा के उद्धार के विषय में कलयुग के समान कोई युग नहीं है। यदि कोई विश्वास करे भगवान के गुण प्रभाव प्रेम की बातें गाकर के, जैसे जो भगवान के गुण है कि विशुद्ध मल रहित मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार सागर से तर जाता है और अपने कर्मों को भी खुश नहीं। पराग जो है अच्छा होता है तभी सत्संग मिला है, तभी एक प्रकार से मनुष्य का जन्म मिला है, तो पराग तो अपना बहुत ही अच्छा है। ये उत्तम कर्मों का फल है जो उत्तम देश काल और उत्तम जाति उत्तम धर्म में उत्तम संघ के बीच के मां एक प्रकार से समय बिताना ऐसा मौका मिलना। तो बड़े भाग से मनुष्य का शरीर भी है और सत्संग भी सुनने की बड़े भाग से मिलती है और भी ये सब चीजें बड़े भाग से मिलती है। जो मिली तो ये भगवान कृपा से मिली है, भाग्य तो भगवान तो बनाते हैं ना, इसलिए समझो कि भगवान देखते हैं कि ये अनंत जन्मों से अपने 84 लाख योनियों में भ्रमण करता फिर रहा है, तो अब तो इसको मौका दो, तब भगवान मनुष्य का शरीर इसको देते हैं। बड़े भाग्य मानु सतनु ये मनुष्य का शरीर तो बड़ी भाग्य से मिला है, देवताओं को भी यह दुर्लभ है, ये बात शास्त्रों में लिखे। इसी प्रकार से थी भगवान पर दोष लगाना तो बिल्कुल ही ऐसे झूठ है, क्योंकि भगवान तो हर वक्त हम सब पर कृपा करते ही रहते हैं, उनकी कृपा का प्रवाह तो हर वक्त बहता ही रहता है। इसको बहुत दुखी देते कि भगवान इसको मनुष्य का शरीर देते हैं। फिर तो पैदा या कर जीवात्मा 4 प्रकार की 84 लाख योनियों के बीच के मां माया का प्रेरिया हुआ कालक्रम गुण और स्वभाव से घिरा हुआ ये भटकता फिरता है। कभी पशु कभी पक्षी कभी कीट कभी पतंग घटयंत्र की मां के संसार के मां चक्कर लगाता ही रहता है और बहुत आपने समझो कि दुखी हो जाता है इसके घोर कष्ट को देखे कि आतुर देख के और भगवान दया करके मनुष्य का शरीर देते। कबहू कह करी करुणा नर देखी कभी दया करके भगवान इसको मनुष्य का शरीर देते हैं। ऐसे भगवान है जो बिना ही कारण प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, जो दयालु भगवान इसको मनुष्य का शरीर देते हैं। यदि हम लोगों को भगवान मनुष्य का शरीर नहीं देते तो अपने पास में क्या जोर था, क्या उपाय था। यदि पशु पक्षी कीट पतंग की योनि में डाल देते तो भटकते फिरते, तो अपने पास कोई उपाय तो था ही नहीं। कि संसार में जितने पशु पक्षी कीट पतंग जो है तो घूम रहे फिर रहे हैं, उनका यदि उपाय होता तो वे भी मनुष्य होते, धर्म के बस की बात। यही बात हमारे लिए लागू पड़ती है। तो भगवान ने असंख्य कोटि जीवों के बीच के वंश हैं जिनके विषय में ये बात समझी कि ये सो प्राणी होना हो सकता है, ये अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है, उसी को भगवान एक प्रकार से मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य शरीर धारण करके फिर हम उस बात को जो भूल जाते हैं जो भगवान का आदेश है, उपदेश है, जो गर्भावस्था में हम लोग थे तभी एक प्रकार से थी, भगवान ही हमारी रक्षा करते थे और भी भगवान ही करते हैं। ऐसे भगवान को कभी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए ये बात सिद्ध हो गई कि काल के ऊपर दोष लगाना, कलयुग के ऊपर दोष लगाना ये गलत है, कर्म के ऊपर दोष लगाना ये भी ऐसे गलत है, प्राग पर दोष लगाना, प्राग तो बहुत अच्छा है, तब मनुष्य का शरीर मिला है और अच्छे प्राग से सत्संग मिलता है, और ईश्वर पर दोष लगाना सबका मूर्खता ही होती है। हमारे शास्त्रों के बीच हमारी ये बात जगह जगह लिखी है कि सज्जुग के वहां 10 बरसात होने से जो कार्य की सिद्धि होती थी वो द्वापर के बीच के वहां 1 महीने से और कलयुग के बीच के वहां 1 दिन के वहां से और 1 साल। तो आप ख्याल करके देखो 1 दिन के वहां परमात्मा की प्राप्ति हो सकता, हम लोग उससे वंचित हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही विजय की बात है। शास्त्र कहते पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, किसी पुराण में देखिए विष्णु पुराण के वहां 6 अंश तो दूसरी ध्यान में देख लीजिए। इतनी बात नहीं, और भी बात कही है कि ये कलयुग जैसे पापों की खैन है, अवगुणों की खैन है, किंतु इसमें एक बड़ा भारी गुण है कि इस उसकी भक्ति करने से उसका शीघ्र उद्धार हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि त्रेता युग के बीच के मां जो है चक्कर में से, सतयुग के बीच के मां ध्यान करने से, द्वापर युग में पूजा करने से मनुष्य का कल्याण होता था शीघ्र, पर कलयुग के बीच के मां तो केवल भगवान के हरि के नाम के कीर्तन से शेषो आपने वो काम होता था। तो हरि का नाम मजबूर है, कलयुग मजबूर है, अभी कोई ऐसी कानून भी नहीं बने है कि कोई भगवान का भजन करेगा तो उसको तोप को देख उड़ा देंगे या उसका सब कुछ छीन देंगे। हिरण्यकश्यपु के राज के बीच में तो अपना पुत्र जो प्रहलाद है उसके लिए एक प्रकार से याद हो गया था कि ये ईश्वर की भक्ति करे, उसका भजन ध्यान करे, टमाटर आजकल के राज के मंत्री जी ऐसी कई कानून बन गई, भगवान का भजन नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, गीता का पाठ नहीं कर सकता, तो समझो कि हम तो जीते ही हमारे के से जो भी कुछ अपने समझो कि ये कानून अभी तो बने ही है ना, तो अपने जल्दी लाभ उठा लेना चाहिए शरीर कि जब तक ये शरीर है इसमें प्राण है तभी तक जो कुछ करना हो शीघ्र शीघ्र अपना कर, और इसको निकम्मा मत रहने दो। यही आपकी सुनने की सबसे अच्छी आपने लगन है। की वस्तु, एक क्षण भी आपने इस उनको फालतू काम में मत बिताने दो। जिस काम को आप अपनी आत्मा में सबसे बढ़ करके समझो, वो काम हर वक्त किससे लेना चाहिए? आपकी आत्मा या गाय दे दे कि ठीक है सबसे बढ़कर काम हो रहा है, पर दूसरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं। और भी बहुत से ऋषि लोग या भक्त लोग कहते हैं कि ऐसे मौके को कभी नहीं चुकाना, कभी नहीं चुकाना चाहिए। क्या करना चाहिए कि एक ही बात है सबसे बढ़कर कि हर वक्त भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने भी यह बात कही है पातंजलि योग दर्शन में कि पहले पाद के 27 और 28 के सूत्र में कि तस्य बात के पढ़ने है वो तब जप तदर्थ भावन, वो परमात्मा का नाम पढ़ने है, ओम है। इसी प्रकार से और भी होते ना उनको एक ही बात है, उसके नाम का जप और अर्थ का ध्यान, यानी जप और ध्यान ये दो बात प्रधान। इसे क्या होता है कि सारे विघ्नों का विनाश होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उनको सब काम छोड़ करके पहले ये काम करना चाहिए, चलते उठते बैठते खाते पीते सोते सोते भी भगवान का भजन ध्यान करते करते ही सोए, नहीं तो उसका जो सोना है वो बेकार। जैसे खार की भूखनी होती है और वो एक प्रकार से आग को प्रज्वलित कर करके और ईंधन को भस्म कर जाती है, वो ऐसे होते कि धातु को भी गला देते। इसी प्रकार से भगवान का जो भजन और ध्यान है ये पापों को जलाने के बीच के उससे भी बढ़ करके, भगवान का जो भजन ध्यान है वो पापों के नाश के लिए नहीं करना है, वो तो अपने आप ही उनका विनाश हो ही जाता है। ये तो करना भगवान के मां प्रेम होने के, भगवान के दर्शन होने के, ये ऊंचा उद्देश्य है, अच्छा उद्देश्य है। कोई आदमी सूर्य भगवान से ये प्रार्थना करे कि आप अंधकार का नाश कर डालो और हमको दर्शन दो, तो ये दो सवाल करने की जरूरत नहीं, आप साक्षात प्रकट होकर दर्शन दो, बस दर्शन देने से अंधकार तो आप भी नष्ट हो जाएगा। तो जब भगवान मिल जाते हैं तो भगवान का दर्शन होने पर फिर पाप रहते ही नहीं, तो सब स्वयं अपने आप ही जाते, उनके लिए अलग कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। विद्यते हृदय ग्रंथि प्रच्छेदन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। उपनिषदों में लिखा है तस्मिन् दृष्टे प्रावरे, उस परमात्मा के साक्षात दर्शन होने पर हृदय के मां जो जड़ चेतन की ग्रंथि है चिज्जड़ ग्रंथि, उसका भेदन हो जाता है। शरीर और आत्मा की एकता सिद्धि के शरीर से संबंध छूट जाता है सभी शरीरों से, और सभी शरीरों के जो कारण समझो की अविद्या ज्ञान से उनसे भी समय के वास्ते समझे की संबंध छूट जाता है। कितने आनंद की बात है, और सारे स्वयं से ना कोई भी शंका रहती ही नहीं, और सारे उसके जो पाप हैं सारे कर्म हैं सुवासु इन सब का भी स्वाहा इनसे भी समाप्त हो जाती। इसलिए भगवान के दर्शनों के तो बाकी क्या है, तो प्रभु से तो यही मानना है कि आपका साक्षात दर्शन होए। हाँ, भगवान से प्रेम मांगना है, वो भगवान से प्रेम की इज्जत कम नहीं है, क्योंकि प्रेम जो है भगवान का स्वरूप ही है। तो भगवान का दर्शन मांगना है, भगवान से प्रेम मांगना एक ही बात। भगवान ने उपदेश देकर के बहुत चेतावनी दी है, यम लब्ध्वाचा परम लाभम मन्नते नादिकं गतः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचालते। तन विद्या दुख संयोग योग योग संगीत स्वनिश्चय योगतव्यो योग निर्मल चेतसा गीता की छठे अध्याय से ये 22-23 के श्लोक हैं। भाव यह है कि जिस परमात्मा को पाकर के और उससे बढ़कर ये साधु उस काल में कुछ भी नहीं समझता है, और जिस परमात्मा की प्राप्ति रूप स्थिति में स्थित होकर के इसके शरीर पर भारी कोई आघात करे, आग में जला दे, शस्त्रों से काट डाले, तो भी इसको गहरा नहीं होती, तो चलायमान नहीं होता।